మాతురింగోష్ఠవాటి రాధాకుండం గిరివర మహోరాధికా మాధవాన్ కృపయా శ్రీ గురు వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనిభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ తదాలయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తదభక్తాయ నమః యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతరయా జీవా పుత్రేతి తన్మయతయా తరభోగినీ తం సర్వభూతం మునిమానతోస్మి తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధే మాం చరణం. कल से हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष में अधिवास तिथि हम लोग मना रहे हैं. अभी से जन्म 11 तारीख को होगा, उस दिन धूमधाम से उनका जन्म महोत्सव मनाया जाएगा. ये रामकृष्ण ही हैं, कृष्ण ही है और कोई नहीं. और कुछ नहीं तो हमने आप लोगों को रामचंद्र जी के जनकपुर में पधारने और सीता जी के स्वयंवर के संबंध में हम लोगों ने बतलाया और किस प्रसाद से प्रकार से अयोध्या से बारात आई, रामचंद्र जी का सीता के साथ में, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न जी का श्रुति कृति और भरत का मांडवी से ये शादियां हुई. इसके बाद में बड़े धूमधाम से बारात विदा होने आई. महाराज जनक वे ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, संसार से परम विरक्त हैं. इतना होने पर भी जब सीता जी की विदाई होने लगी और सीता जी आई और उनके गोदी में लिपट गई और रोने लगी विदाई के समय, महाराज जनक का भी ज्ञान धरा रह गया. उनके आंखों छलछला आए और वो भी रोने लग गए. तो और की तो बात, घर की मैना पक्षी सुख पक्षी भी सीता के लिए विलाप करने लगे. सारे जनकपुर के लोग सीता के लिए विलाप करने लगे. अद्भुत विरक्त दशा हुई, किंतु फिर धैर्य धारण कर वशिष्ठ जी और सतानंद जी के कहने से बारात विदा हुई. अभी बारात विदा ही हो रही थी और इतने में देखना तुम रामचंद्र, तुम बारात विदा होने ही जा रही थी, इतने में बड़े जोर से आंधी आई. बड़े जोर से इतनी की धूल आकाश मंडल में व्याप्त हो गई और राजा जितने थे सब जो आए थे धनुष यज्ञ में वो मोह प्राप्त हो गए, आंखें बंद हो गई, ऐसे थर्रा उठे। केवल वशिष्ठ जी महाराज जनक और इधर रामचंद्र जी और दशरथ महाराज इत्यादि ये सब का कुछ नहीं हुआ, किंतु बाकी लोग डर के मारे कांपने लग गए और देखा जी हाथ में फरसे लिए हुए बड़े क्रोधित होकर पृथ्वी के क्षत्रियों को 21 बार ध्वंस करने वाले परशुराम जी विकराल जटाए क्रोध में आग हुए वहां पर उपस्थित हो रहे। आते ही सब राजा लोग डर गए, महाराज जनक भी डर गए इनका विकराल वेश देखकर। बोले जी ओ महाराज जनक तूने ये क्या किया, प्राचीन काल से दो धनुष आ रहे हैं जिसमें शंकर जी ने त्रिपुर का वध किया और उसे अवशिष्ट एक वैष्णव धनुष बना और उस समय में त्रिपुरासुर का ध्वंस करने के बाद में वो सुरक्षित था और उसी को लेकर शंकर जी और इधर विष्णु दोनों ने देवताओं में कुछ मिल करके और दोनों में युद्ध करा दिया। वही विष्णु से और शंकर का तमाशा देखने के लिए कौन बलवान है, किसका प्रभाव अधिक है। और शंकर जी वो धनुष लेकर जिसको त्रिपुरा सुर को मारा था जिस धनुष से और जिसे वो विष्णु लड़े थे अवर शंकर से और दोनों में युद्ध होने पर शंकर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और उनके धनुष के टंकार इत्यादि को काट करके वैष्णव बाण से और धनुष से उनको जीर्णित कर दिया। और फिर जब वो हार गए शंकर तो वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे, स्तव स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हमारा सौभाग्य कि ये दृश्य हमको मिला, अर्थात तो विष्णु की श्रेष्ठता करने के लिए ये हुआ। वो धनुष त्रिपुरारी वाला वहां पर रखा था और राम का जो वैष्णव भगवान का जो विष्णु का जो धनुष था वैष्णव वो अभी मेरे पास में है। मैंने देखा तपस्या के बल से जो ये अभिमानी दाम्भिक राम दशरथ का पुत्र जो कौसुक का शिष्य बनता है विश्वामित्र का, आज वो शंकर के पुराने धनुष को तोड़ दिया। मैं अपने साथ में ये धनुष लाया हूं, यदि ये वीर पराक्रमी है तो इसका धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे और इसके बाद मैं देखूंगा जी हाँ हमसे लड़ने योग्य है तब द्वंद्व युद्ध से करेंगे। ललकारने लग गए। राम ने कहा जो अच्छी बात है लड़ाई करेंगे। इतने में बीच में लक्ष्मण जी बोल दिए अरे ऐसे ऐसे धुन या तो हमने पुराने तोड़ दी, आपको कभी क्रोध नहीं हुआ और इस एक सड़े गले पुराने धनुष के लिए धनुहिया के लिए आप इतना बिगड़ रहे हैं, क्या बात है। ये तो बड़ा विषधर है, वो इसका बड़ा भैया बड़ा ऊपर से कोमल दिखलाता है सम और ये छोटा सा बच्चा महादाम्भिक है, मैं हमारा फरसा उठ रहा है, आप देखो तुमको कोई विश्व में रक्षा नहीं करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ पर कोई कुमड़े का बतिया नहीं है। कुमड़े का बतिया माने होता है ऐसे हाथ दिखलाने से मर जाता है,
सड़ जाता है
कि सड़ जाता है, तो कोई कुमड़े का बतिया यहाँ नहीं है। ये इतना कहते हुए फिर बिगड़ गए। जब बिगड़े तो राम को कहते हैं ये तुम ऊपर से बड़ी बड़ी मधुर मधुर बात कहता है और इधर में ये बड़ा विषधर नाग जैसा विष उगलता है, आज ये विश्वामित्र के साथ में नहीं आया होता तो कभी इसको मार करके खत्म कर दिया होता। लक्ष्मण बोले जैसे उसको रखते क्यों है, जरा वार करके तो देख लो, यदि शक्ति है तो ये देख लो। इस तरह से उनको तरह तरह से ये रिझाने लग गए और उनका क्रोध उमड़ता हुआ चला गया। अक्रोध में उनकी विष्णु की जो शक्ति है राम की,
जो
आवश्यक अवतार का, वो खत्म होता गया। जितने क्रोध करते गए और ऐसे को अंत में हर्षा भी चलाना चाहा किंतु उनके हाथ से चला नहीं। कहा जी मैं जान करके छोड़ रहा हूं, अब नहीं छोड़ूंगा यदि एक बात किया। तो राम ने कहा जैसे भी हो, ये आपका दास है, आपका नाम मेरा तो केवल राम नाम है और आपका परशुराम है, इतना बड़ा नाम, आप हमसे बड़े हैं, हम पर क्रोधित क्यों हो? ये दुधमुक्का बच्चे को क्षमा कर, आप तो सब 21 बार पृथ्वी का धनुष किया,
चले ना।
तो देखिए आप जो क्षत्रिय वेश में आए, एक तो साधु वेश आपका किंतु हाथ में फरसा, और यहां पर तीर धनुष क्षत्रियों का वेश, और उधर में जटाजूटधारी साधुओं का वेश, देख करके इसको भ्रम हो गया बच्चे को। हमारे एक स्वागतू कुल में ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो किसी की चुनौती को स्वीकार न करे। रण में हम पीछे देने वाले नहीं हैं। अब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हमारा क्षत्रिय कुल में ऐसा कोई पैदा नहीं, हमारे सूर्य कुल में, सूर्य वंश, इसलिए आपने ललकारा, इसलिए बच्चा बोल रहा था, नहीं तो ये नहीं बोलता। इसी तरह से उनको चिढ़ाते और करते, अंत में राम ने वो वैष्णवी शक्ति ले ली। तब इनको जब शक्ति ले ली तो जब निशक्ति खो गए, ये कौन है, इतना तो विश्व में इतना दिन रहा, कोई इतना इतनी निर्भय युक्त हमसे बात नहीं की। अंत में निकाल ये विष्णु का ये धनुष लो और इसको चढ़ा दो, तो मैं समझूंगा हाँ तुम यथार्थ में भगवत राम है। शंकर शंकर चाप चढ़ाओ, अब मम संदेह, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ राम रमापत करधन लेहु, खेच हूं चाप मिटहु संदेह। ये राम रमापति लक्ष्मी नारायण विष्णु का ये धनुष है और इसके ऊपर में प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण यदि छोड़ो तो हम समझ जाए। तो राम ने उनके हाथ से धनुष ले लेते ही अपने आप चढ़ गया, चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने बाण उठाया और खेच करके कहा मैं ये अमोघ बाण अपने हाथों में लिया है, ये निष्फल नहीं जाएगा, या तो आपको मारेगा अथवा आपके जो तपस्या का फल है जो आपने अर्जन किया है लोकों में जाने आने का और ये सब, ये तपस्या का फल आपको समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरा संदेह अब चला गया, मैं समझ लिया कि आप भगवत राम हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे मारे मत, किंतु हमारे तपस्या के फल से जो ब्रह्मलोक तक जाने की जो शक्ति थी वो तो समाप्त हो जाए, किंतु मैं चलता फिरता रहूं, आप ऐसी सामर्थ्य दें कि मैं मंदराचल में जाकर के और कुछ तपस्या करूं। भगवान ने उठाया बाण और उसको चलाया, उनको तो नाम नहीं मारा, उनकी तपस्या का जो फल था ब्रह्मलोक जे आने आने के लिए और जो सुख भोग का वो सबको काट करके खत्म कर दिया, और इसके बाद में राम की परिक्रमा करके वे अयोध्या अपने मलयानी के पर्वत पर मलय पर वो चले गए। पहले उनका पहले उन्होंने परशुराम जी ने एक ही रात पृथ्वी का ध्वंस करके सारा राज्य कश्यप जी को दान कर दिया था और प्रतिज्ञा की थी मैं धनुष बाण रख देता हूं, अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब मैं अपनी तपस्या करूंगा। तो राम लक्ष्मण जी ने कहा, तो आप जबकि कश्यप को दान कर दिया तो यहां पर क्यों आए? अभी क्रोध नहीं गया? ये भी उनको दोहरा करके कहा। इस तरह से उनका क्रोध शांत हो गया, वो चले गए और समझिए कि ये राम साधारण नहीं पर ब्रह्म है। इसके बाद में बरात लौटी, कई कई ने सबसे आगे बढ़ करके वर वधु का स्वागत किया और उनकी आरती उतारी, घर में ले गई राम को आगे और सीता को। सीता जी ने उनके पैर छुए और सौभाग्य की भव इत्यादि कहा, फिर अपने बेटे को और फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न को घर ले गई, अपनी मैयाएं ले गई। और इन्होंने सीता जी को अपना कनक महल जो महाराज दशरथ ने दिया था, कनक महल वो कैकेयी ने उनको सीता जी के लिए, राम के लिए वो कनक बड़ी प्रीति करती थी ना। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद में महाराज के आदेश से भरत जी अपने ननिहाल गए और उनके साथ में शत्रुघ्न भी गए। और उधर महाराज दशरथ विचार कर रहे, अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं चाहता हूं कि युवराज का पद राजकाज ये सभी संभाले, मैं ऊपर से रहूंगा, किंतु अब युवराज का पद इन्हीं राम को दे दिया जाए, बड़ा लड़का है। वशिष्ठ जी से पूछा, ऋषियों को बुलाए, मंत्रियों को, और सब ने अनुमोदन किया, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा जी शुभ मुहूर्त कब है? तो इस वर्ष में और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है इसके लिए, बस केवल कल ही है। इसी बीच में कल सारी व्यवस्था करके उनको दे दिया। महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे बेटे भरतशत्रुघ्न तो अभी ननिहाल में गए हैं और कोई तैयारी नहीं है, कल कैसे संभव होगा? उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था हम करा देंगे। यह करके सुमंत्र को जो अपने थे मंत्री थे, उनके बड़े प्रिय थे, विश्वास पात्र थे, उनको कहा और उन्होंने अपने दूतों के द्वारा जितनी सामग्री है राज्याभिषेक सारी मंगवा ली और हुआ स्थिर। सब प्रजाएं भी आई, सबने मिलकर के स्थिर किया, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। ढिढोरा पिट गया, महारानी कौशल्या के खुशी के आंसू बहने लगे, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, सब भाई लोग प्रसन्न हुए, कैकेयी तो इतनी प्रसन्न हुई कि जिसका कोई ठीक नहीं, हद नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई। जो उसको समाचार सुनाया कुब्जा ने, उनकी मंथरा ने उसको सोने का अपना बहुत सुंदर हार उसके गले में दी, वो कुबरी थी, उसने वो हार को निकाल करके फेंक दिया। अरे मूर्ख, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, आज तू राजरानी है और कल तुम दासी बनेगी, कौशल्या बनेगी राजरानी, राजमाता और राजमाता का कहलाएगी और तुम नौकरानी कहेगी कहा जाएगी, तुमको ज्ञान नहीं है। अरे ऐसी गंदी बातें मत कह, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, तुम उपहार लो, बड़े प्रसन्न हो जाओ, मैं भी राजमाता ही हूं रहूंगी, राम हमको बहुत स्नेह करता है, अपनी मैया कौशल्या से भी यदि कहेंगे कर दीजिए कुछ, मैं तो इनके समझ में नहीं आ रहा। ओ ये फिर उधर मुख कीजिए थोड़ा सा, बस
ज्ञान के मार्ग से ज्ञान है प्राप्त करना है तो नहीं कि वे और इसमें बताया कि
अधिक समय मत लीजिए
सो वी आर हियरिंग राम कथा रामायण ऑन द लोटस माउथ ऑफ गुरुदेव वेयर ही सेज कृष्णा हिमसेल्फ ही बिकेम राम हु इज राम नन अदर देन कृष्णा एंड This is the period of his marriage. When Lord Ram, he got married in Janakpuri and Sita was going back to her in-law's house. In India, this is always a very pathetic scene, even today. When The daughter, she departs her parents' house and goes to her in-law's house. She changes her residence forever. That scene is always very, very pathetic scene. Raja Janak, he was a renounced person. Jnani, detached fully, but When Sita, she went to her father and she fell in his lap and started crying. Then Janak also could not resist. He could not also stop himself and he started crying and weeping. That was the scene. When Sita ji was departing, not only Sita ji was weeping, or her mother was weeping, or Raja Janak was weeping. Even the small birds like Mena in that house was weeping. Whole Janakpur was weeping. Every person, every living entity was weeping when Sita ji was departing from Janakpur to Ayodhya. Everything took place. They just started going. The moment they were going, This depart activities was taking place. There was a very big storm-like situation. A sort of pavander, what you call it, cyclone. So much dust, it went around the whole atmosphere that one cannot see what has happened. Everyone was scared. It was so much heavy storm. What was happening? Parshuram ji was coming. Parshuram is known as Shaktavesh Avatar of Lord Ram, incarnation of Ram. And when he came, Gurudev is explaining that this dhanush, what do you call dhanush? Bow. This dhanush bow, which was broken by Lord Ram, that belonged to Lord Shiva. Lord Shiva killed one demon. His name was Tripurar Asur. And with this bow he killed Tripurasur. And once demigods, they played a very clever situation. They wanted to see a fight between Lord Shiva and Lord Ram.
Ram, not Vishnu.
Vishnu. And the fight took place. In that fight, finally Lord Shiva was defeated. This was the show to the whole universe that Shiva is Lord Ram, Vishnu is Lord himself and Shiva is his worshiper. And Lord Shiva started worshipping Vishnu. And then Vishnu became pleased. So Vishnu was having one bow that is called Vaishnava bow with him. And Lord Shiva was having one bow that was this bow which was lying in the house of King Janak. And that was broken by, this bow was broken by Lord Ram. When Parshuram came, he said, you have broken this bow. If you are really a powerful person, or Vishnu yourself, then here is a Vaishnav bow. You take it, put a string on it, and then you use it. I will see if you can do it, then I will accept your strength. Meanwhile, Lakshman, younger brother of Ram, looking very a child boy, he said, in our life we have broken so many bowls, and this was very old and a rusted one. If we have broken, why are you crying so much? And Parshuram said, do you know
Ram really not broken that bone? Only he touched and automatically it was broken. What should he do?
So Lakshman said, my brother did not break it. It was so much old, stale and rusted that my brother just touched it and it got broken. And you are crying for it, such a old book.
I will give you so many new. I will give you so many new.
I will give you so many new. New bow. And at that time he became, do you know whose bow was this? And he became very much angry. When he was very much angry, I will kill you. And he took his farsa. That was farsa, what do you call it?
X.
Well, it is not exactly X. X is called Bihari, in fact, in Hindi. It is something different. Anyway, he just, now Gurudev is here saying one thing which is really an insight to us. Lakshman was speaking in this manner that the anger of Parshuram was increasing and increasing and increasing. And because of this anger, he was losing his Shakta Veshavtar of Lord Ram. That incarnation of Lord which was in him, he was losing it. And his strength was going down. And he found himself that he was unable to pick up his axe. And when he found that he was unable to pick up his axe, Lakshman knew it. Lakshman knew it. But Lakshman said, you are trying to set us as if we are just, Gurudev was saying, a small
baby pumpkin
is that if you just touch it and it just it gets,
if you point out that it rocks,
it breaks. If you just point out it breaks. This is the quality of baby pumpkin, kumra bacha. And this way he was becoming more and more angry and he was losing his all strength. Then he said to Lord Ram that if really you are Vishnu, then you just take this bow and put a string on it. And Lord Ram Gurudev is again saying, he just took that bow and automatically string came on it and he put one arrow on it and he said, look, I am going to shoot this arrow, but this arrow is going to kill you.
बोला
एंड देन
और भी एक बात कही, आप अपने पिता के ऋण से क्षत्रियों को मार करके ऋण से तो मुक्त हो गए, ये बात तो ठीक है। अब
क्यों लड़ने आ गए?
नहीं, अब तुम क्या किस ऋण से, अब गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाओ।
परशुराम
तोड़ने का ऋण से भी तुम मुक्त हो जाओ, राम को और हमको मारकर, ये कहा। पिता के ऋण से तो मुक्त हो गया, अब गुरु का जो धनुष था उसको तोड़ने से जो
हमको मार के तुम गुरु ऋण से भी मुक्त।
अब हाँ, गुरु ऋण से
परशुराम he killed all the क्षत्रियस 21 times in in his life. He killed all the Kshatriyas. He finished Kshatriyas from this earth 21 times. Because he took a vow that I will kill all the Kshatriyas from this earth in order to repay my debt of my father. Because these Kshatriyas, they have done some offense at the feet of his father. So Lakshman was saying that you have killed so many Kshatriyas 21 times in your life, and then you pay the debt of your father. Now this bow belongs to your Gurudev and it has been broken by my brother. You kill both of us and you also pay debt of your Guru also. Why are you sitting here idle? Go and do. He was instigating him. And look, Parshuram was trying to lift his axe, but he was not able to do it. Well, then, when finally he said, I am not doing this thing because you have come with Vishwamitra and I honor Vishwamitra, so I am not doing it. But here, Ram, if you just show me that if you take this bow and put a string on it and then you put an arrow on it and you shoot, then I will find that you are really Lord himself, yourself. And Ram did it. But now arrow was ready to be shot. Where to go? Ram said that it is achuk. Achuk means it will do something. It will not go in vain because it is my arrow. So what should I do? Either I will kill you, this arrow will kill you, or it will kill the fruits of your austerity. Then he said, don't kill me. Let it kill my fruit of austerity, but something should remain with me. My fruit of austerity of going to so many other abodes may be killed, but I should be given so much strength that I should be able to walk and move and should go to Malay Parvat, one mountain, and do more austerity and pursue. So Lord Ram shot that arrow and then they all came back to Ayodhya. And they were very heavy welcome in Ayodhya. Here Gurudev is saying one thing, that when Ram came with Sita, his bride, he was very warmly welcomed by his mother Kekayi. Though his real mother is Kaushalya, how warmly welcomed? Kekayi was so much dear to Dashrath, King Dashrath. And King Dashrath gave him a very, very beautiful golden palace. Name of that palace was Kanak Mahal. And Kekayi, in the joy and in happiness, gave the keys of that Kanak Mahal to Sita, that my Kanak Mahal now belongs to you. This was her gift to Sita Ram. It shows that how much love she had for Lord Ram. And it happened after some time that Bharat and Shatrughan went to their maternal house. They were away from Ayodhya, and Dashrath Maharaj, he thought that I should give my kingdom to Lord Ram. I have become now old. So what should I do and when should I do? So he called his guru Vishishti, and Vishishti told that we have only one day, that is tomorrow. In whole year there is no any auspicious day. And Maharaja
What that date was?
Ram Navami.
Same Ram Navami.
There is only one day. That is the birthday of Lord Ram. Ram Navami. And at that time, Maharaja Dashrath said, how is it possible that we will arrange everything? My sons Shatrughan and Bharat is also not there. Vishishti said, everything I will arrange because there is only one day left. We have to do this thing. So, this news is spreaded. And Vishishti was also making so many arrangements. The whole country was happy. Every citizen was happy. All mothers were happy. The most happiest lady was Keke. She was so happy when this news was told to her by her servant. Her name was Mantra. She started dancing and gave her very valuable necklace to that servant, Mantra. And that Mantra शी स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग कैकेयी, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट एंड शोइंग योर हैप्पीनेस, आई फील यू आर द फुलिश लेडी ऑफ दिस वर्ल्ड. व्हाई आर यू हैप्पी? यू नो यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ सर्वेंट एटीट्यूड, सर्वेंट पोजीशन. नाउ योर कौशल्या सॉ योर व्हाट शुड बी कॉल्ड सॉ आई डोंट नो. Kaushalya will become Raj Rani. She will become Raj Mata. And you will be her servant. And you are becoming happy. So this was happening. And what happened to Guru Dev tell them?
Kaikeyi ji ko yaad aayi. Apne pitaji ki baat. हमारे पिताजी ने इनसे प्रतिज्ञा करा कि उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा हो ये राज्य का अधिकारी युवा राज में. और फिर इनको याद आई राम की बात. राम ने गोदी में बैठ करके कहा था कि हमारी दो नीति स्वीकार, दो बात, भरत को राज्य हो और हमारा 14 वर्ष वनवास ये जरूर करो, नहीं तो हमारा देवताओं का ये जो अभिलाषा थी वो पूर्ण नहीं हो, पृथ्वी का भार नहीं. और तीसरी बात उनको याद आई महाराज दशरथ के 2 वर देने का, जिसको छाती के रूप में उसने रखा. अब उसको याद आई जो हमको किसी भी हालत में 20 पीना होगा, सारा संसार हमसे घृणा तो करेगा किंतु फिर भी हमें यही करना होगा जो राम ने हमसे कहा है, इसलिए प्रतिज्ञा कराइए. फिर तब उन्होंने वो कोप भवन में चली गई, अच्छे राजरानी के पोशाक को फेंक दिया, गंदे फटे पुराने कपड़े अलंकार रहित धो करके और रोने लगी. महाराज दशरथ को पता लगा, कोप भवन में गए उसको मनाने के लिए. उसने कहा कि आपने 2 बातें हमको बर देने के लिए कहा था, अब मेरे पिताजी की बात याद है? तो उन्होंने याद कराया जो महाराज दशरथ जी ने आपने हमको 2 बातें दी थी, प्रतिज्ञा की थी देने की, और आज मैं समय पर वो दोनों वर मांगती हूँ. और हमारे पिताजी की बात याद है आपको कि हमारे गर्भ से ही बच्चा जो राज या राजगद्दी पर बैठेगा? आप उनको याद आई. मैं कहा मांगो, क्या चाहती हो? मैं सभी कुछ दे दूंगा. मांगती हूँ कि भरत को पहले राजा बनाइए राम के बदले, उसका राज्याभिषेक हो और रामचंद्र 14 वर्ष के लिए बन जाए. महाराज दशरथ सुनते ही एकदम उचित हो गए. कुछ संतना कुछ ये होने पर वो मनाने लगे, जैसे यही आप कहते थे, सब रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाय बल वचन, यही आप कहते रहे थे. अब भीम जैसे एक छोटी सी बात नहीं मान रहे मेरी, और प्रतिज्ञा करके कहा है आप जैसा भीरु का पुरुष कोई जगत में नहीं है, जब है तो आप मेरे बात को आप सत्य करके दिखा. इसके बाद में रोने लगी, बहुत समझाने की चेष्टा की. अच्छा भरत राजा हो जाएगा इसमें हमको कोई संदेह नहीं, हम करते, किंतु ये हमसे मत कराओ कि राम को हम बर्बाद, तो हमारा बेटे का राज्य स्थिर कैसे होगा? ऐसा नहीं, जरूर देना. शोक में विवल हो गए, रोने लगे, मूर्छित हो गए. कहीं ने राम को बुलाया, राम आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया. किसके बुलाया पिताजी? पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, रो रहे हैं. कहीं ने कहा कि मेरी छोटी बात पर ये रो रहे हैं. मैंने कहा जी भक्त राजा हो और राम का वनवास 14 वर्ष के लिए, बस इस छोटी सी बात के लिए रो रहे हैं. कापुरुष जैसे हैं, सत्य का विचार नहीं उनको है. राम ने कहा प्रणाम करके मैया को, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कठोर तुम बातें कर रही हो, मुझसे कह देती चुपचाप, मैं तो ऐसे ही चला जाता. तो मैं अभी तैयार होकर के आ रहा हूँ अभी वनवास के लिए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आदेश है. और यही यदि राजा की इच्छा उन्होंने कर पाते हैं तो मैं अभी तुरंत वनवास के लिए अभी जाता, कल के लिए नहीं अभी, मुझे अभी तुम करो बेटे, नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे. राम गए, कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया.
कौशल्या ने सोचा कि आप राज्याभिषेक कल होने वाला है इसलिए आया है, बड़े आशीर्वाद दिया। तो जैसे देखो ये समय धैर्य का है, मैं अभी वन के लिए जा रहा हूँ पिताजी के और माता जी के आदेश से। ये कैसे हो गया? माता को बहुत समझाया, फिर सीता जी के पास में गए, सीता जी विलाप करने लगे, बोली हम भी चले। किसी तरह से उनको कहा जब जंगल में सांप बिच्छू और मर्ष दंश इत्यादि हैं, तुम सुकुमार तुम्हारे पैर नहीं जा सकेंगे, और सुख दैत्य दानव चारों तरफ में घूमते हैं, पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती, उसमें कांटे से भरा हुआ है, इतना सुगम नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ, कौशल्या की सेवा करो या तुम जनकपुरी में कुछ दिन रहो जब तक कि नहीं मिला। किंतु वह नहीं मिला, जो पति प्रताप धारण वही है, जहाँ पति है वही स्वर्ग है, वही पर सब कुछ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया, फिर कौशल्या जी ने भी सीता को समझाया, वो नहीं मिला। अंत में कौशल्या ने कहा बेटे इसको आदेश दो तुम्हारे साथ मिला, ये ठीक ही कह रही है, पति स्त्री के लिए पति प्रताप धर्म सबसे श्रेष्ठ, इसलिए ये बुरी बात नहीं कह रही, इसके लिए वही अयोध्या वही इसके लिए सब कुछ है, जब तोरे साथ में। लक्ष्मण जी धनुष लेकर के अड़ गए, बोले आज मैं दशरथ को कामी पुरुष को स्त्री बसी को व्यक्ति जो राजा का आज मार गिराऊंगा, कहकर ही और उसके पुत्र को भी भरत को भी आज पृथ्वी से अलग कर दूंगा, आज देखे कौन आग है उसको बचाने वाला। धनुष लेकर के उछल पड़े, राम ने कहा धैर्य धारण करो, विचार करो, हमको प्रसन्न यदि करना चाहते हो हमारी बात मानो, शांत रहो। महाराज दशरथ के लिए ऐसा मान, उनकी व्यवस्था को देखो, ये किस लिए ऐसे हो, किस स्थिति में उन्होंने दिया, रघुपति की ऐसी बात है, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको सत्य को पूर्ण करते हैं, उनकी व्यवस्था को सोचो, किस विवश अवस्था में वो है, और उनके प्राण पखेरु हो रहे हैं, जा रहे हैं मरने के लिए, और तुम उनको ललकार रहा है, ऐसा मत करो, नहीं तो हम तुमसे भाई का संबंध छोड़ देंगे। सुनते ही उनके चरणों में गिर गए। फिर ये तीनों गए राजसभा में महाराज दशरथ के पास में, जहाँ पर कई कई फुफकार रही है और महाराज दशरथ बेहोश में पड़े हुए हैं। फिर दशरथ को उन्होंने प्रणाम किया, राम लक्ष्मण और सीता जी ने, उस समय में महाराज ने देखा और रोने लगे। राम ने सांत्वना दिया, अब इस छोटी सी बात के लिए रो रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारा छोटा भैया राज पर बैठा, ये योग्य लड़का है, जो कि हमारा भाई है, हमारा विश्वास पात्र है, इसलिए आप कोई चिंता मत कीजिए, 14 वर्ष का दिन तो छोटा ही होता है, मैं लौट आऊं। हाँ जन्म भर भक्त के लिए मैं जन्म भर मैं रह सकता हूँ वनवास में। कई कई ने कहा बेटे देरी मत करो, नहीं तो फिर वो
शुभ मुहूर्त निकल जाएगा,
हाँ शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और फिर राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा भरत का। फिर उन्होंने कहा कि ओ कुब्जा इन लोगों के लिए कसाय वस्त्र जटाजू बन के भेष ले आओ बनाकर। तो वो तीन ले आई पात्रों में, जटाजू और गिरवे कपड़े सन्यासी का भेष, और राम से कहा जिसे तुम अपना ये राजकीय वस्त्र उतार। राम ने उतार दिया और फिर उसको ले लिया। जब लक्ष्मण को देने लगे कभी नहीं, और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण को देने लगे तो वशिष्ठ ने कहा तेने इसके लिए भी मांगा है, वन यात्रा के लिए और साधु वेश के लिए इसके लिए मांगा, अरे तेरी जीभ क्यों नहीं जल जाती राक्षसी। उनकी पत्नी आकर के कहा जब सीता जी को, तब राम ने इशारा किया लक्ष्मण जी ने ले ली, वो भी पहन करके तैयार। अब वो कहती है बेटी तुम भी ये ले लो। इतने में उनकी पत्नी अरुंधति आई, तो ये धिक्कार है तुमको लज्जा है, इसके लिए भी तुमने मांगा था, ये तो अपने मन से जा रही है। महाराज दशरथ ने कहा राजकीय सम्मान के साथ में ये जाएगी और इसके आभूषण अयोध्या की सारा खजाना सारा कर्मचारी सब इसके साथ में जाएंगे। राजे तो तब तब सुने राज्य पर वो राज्य करेगा। कुब्जा बोली जा बेटी बेटी मैं तुमको पहनने नहीं आता, मैं तुमको पहना दू। उस समय में फिर उन्होंने वशिष्ठ अरुंधति ने दोनों उसको निवारण किया और उसको लज्जा और गाला गाली दी। इसके बाद में सीता जी ने रामचंद्र जी के आदेश से ग्रहण कर दिए और फिर उनका इन लोगों ने तबेश बदल लिए साधु जैसा जटा और सीता जी के अलंकार और इसके ऊपर में ही वो एक गेरुआ कपड़ा थोड़ा सा लगा दिया बस। इसके बाद में सुमंत को आदेश इनको रथ पर चढ़ा करके ले चलो और जा करके घुमा करके ले आना। रामचंद्र रथ पर चढ़ करके और गए। इसके बाद चलते चलते अयोध्या की सीमा क्या वो नगरी सिंगेपुर में पहुंचे और वहां का राजा था निषाद राजा, वो बड़ा भारी पहलवान और ये था राम के प्रति समर्पित था कि महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार है। उनको पता लगा, वो तरह तरह के उपहार लेकर के रामचंद्र जी के चरणों में आया, बोला जी हम आज परम सौभाग्य है, आप हमारा ये राज्य स्वीकार कीजिए, यहीं रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये वन ही तो है, वन में हमारा राज्य है, आप राज्य को स्वीकार कीजिए, आज ही आपके राज्य पर मैं अभिषेक करता हूँ। राम ने कहा जी नहीं, पिता का पालन करने के लिए व्रत आए हैं। रात में वहीं पर रहे सारे जितने अयोध्यापुर के लोग, वृद्धाएं और वहां के जितने लोग थे वो सब वहां तन श्रृंगेपुर तक आए थे। सोने का रथ और उसके घोड़े सब वहीं पर रात में विश्राम किए और राम एक वट वृक्ष के नीचे वो तिनके के उनके लिए बिछौना बनाया गया पर्ण कुटीर में रात भर के लिए। वहां पर केवल चबूतरे पर पेड़ के नीचे कुछ तिनकों का ढेर लगा दिया गया और उसी पर लक्ष्मण जी ने अपनी
उत्तरिया बिछा दिया।
उसी पर सीता और राम ने विश्राम किया और लक्ष्मण जी रात भर जगे हुए वीरासन में राम की रक्षा करते रहे और वो श्रृंगेपुर का राजा वह राम की ये सब बातें लक्ष्मण जी से सुनता रहा और सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित होता रहा। रात भर बातें होती रही। ठीक आधी रात के समय में रामचंद्र जगे, सीता जी को जगाया और जगा करके लक्ष्मण जी को भी जगाया और उसको बुलाया श्रृंगेपुर के निषाद राज को। अभी तुरंत सब लोग सो रहे हैं, मैंने जोग माया से सुला दिया, सो रहे हैं, अभी तुरंत चलो यहाँ से और नदी को पार करके गंगा को और उस पार हमको नदी को पार करा दे, ये निषाद राज केवट को बुला करके सबको छोड़ करके रात में घोड़े इत्यादि सबको रथ को और सुमंत्र जी को भी छोड़ दिया और छोड़ करके नदी के किनारे जब गए तो राज उसने केवट राज सिंगेपुर के राजा ने एक केवट को बुलाया, निषाद राजा ने उसको बुलाया केवट को, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और कहा कि इनको राम को पार कराना है। तो वो जो केवट था वो बड़ा चतुर था, उन्हें मैं नहीं पार कराता, क्यों? अरे हमने सुना है एक पत्थर को इसके पैरों से छू दिया तो उसकी धूली लग गई तो बड़ी सुंदरी नारी बन गई, तो हमारी एक बेटी विवाह के योग्य है और ये यदि हमारी नौका भी यदि नारी बन गई तो ये दो बेटियों का विवाह हम कहाँ कराएंगे और हमारा जीवन का निर्वाह कैसे होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, किंतु हमको तो पार जाना है, तो पार जाना है तो पहले आपको मलमल करके आपका चरण धो दूंगा, धूली तनिक न रहे, और फिर मैं परीक्षा करके देख करके तब फिर नौका में चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। तो रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, सीता लक्ष्मण जी वो कठौती लाया और कठौती को देख, पहले कठौती होती है कि नहीं बनती है, कि काठ की तो कठौती है उसमें पानी रखा, देखा जी कठौती यदि इसकी नहीं बनी तो हमारी नौका नहीं बन सकती है? चलाकी चतुराई से उनके पैर मल मल करके धो करके और अपने वंश के सहित उसको पानी और उनको चढ़ाया नौका। नौका पर चढ़ करके राम चले, जब पार कर लिया उधर उस पार में गए तो रामचंद्र जी ने सीता की ओर में कुछ देखा गंभीर होकर। सीता जी समझ गई ये राम के पास में तो कुछ है नहीं देने का और हमारा केवल एक अंगूठी विवाह काल का और बाकी उतार दिया है सोने की अंगूरी, उन्होंने निकाल करके राम को दे दिया। राम ने कहा जैसे ये उतराई लो, तो वो कहता कि मैं उतराई नहीं लेता। अरे तो क्यों? अरे भाई बंधु से उतराई नहीं लेता, तुम भी केवट हम भी केवट, मैं छोटी नदी का केवट और तुम बड़ी नदी का और सागर का तुम केवट हो, तो हम पार करा देते हैं इस नौका से इस नदी को और तुम हमको भाव सागर से पार करा। रामचंद्र जी फिर मुस्कुराने लगे और उसके ऊपर में कृपा दृष्टि दी, वो भाव सागर से पहले ही तर गया उनकी दृष्टि से। रामचंद्र जी उस पार पहुंचे, उस पार पहुंचने के बाद ये कैसे चित्रकूट में पहुंचते हैं, कैसी लीलाएं हुई अब इधर सुनेंगे। और इधर क्या होता है, भरत के अशुभ कुछ दिखाई देने लगे, रक्त की वर्षा होने लगी, वहां आंधी चलने लगी और गीदड़ रोने लगे, कौवे रोने लगे, अंग बाम अंग फड़कने लगा। सुनिए क्या हो गया, बहुत चेष्टा करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ, इतने में देखा क्या अयोध्या से दो दूत पहुंचे महाराज को कहकर, नरेश को इनके नाना और उनके बेटे अपने मामा, दोनों को प्रणाम किया और बोले गुरु जी ने भरतशत्रुघ्न को जल्दी से बुलाया है, कल ही आप आदेश करें हमारे साथ में अभी चले। उन्होंने कहा, सोचा गुरु जी क्यों आदेश दिया, कहे ये सब हम कुछ नहीं, गुरु जी ने कहा जे कुछ मतलब उनको लेकर के जल्दी से आ जाओ। तो वो नाना जी को प्रणाम किया और मामा को प्रणाम किया और फिर वहां से रथ में बैठ करके आए। देखा जो अयोध्यापुरी विधवा जैसी सुनसान पड़ी है, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं, क्षण के शून्य है। और कुछ लोग जो क्षणकों पर थे उनको देख करके घृणा से मुख फिरा दिया, जी क्या बात है। राजमहल के द्वार पर आए तो देखा जे कैकई वहां पर उपस्थित है मंथरा के साथ में, और कैकई का मन का सिंदूर और सफेद कपड़े पहनी है। उन्होंने कहा, मैया पिताजी कहाँ है? पिताजी अभी कौशल्या के घर पर। तो ये सफेद कपड़े क्यों? महाराज जी सिधार गए, मैं विधवा हो गई। राम भैया कहा क्यों नहीं आए, लक्ष्मण जी क्यों नहीं आए? वो वन को पधारे, क्यों क्या बात है? बेटा मैंने सब तुम्हारे लिए किया, ये तुम राजगद्दी पर बैठे हुए इस, अरे मेरे लिए किया बड़ा हृदय द्रावत वो सीनरी है। भरत जी रोने लग गए और बोला कि यदि तुम हमारी रामचंद्र जी यदि हम पर नहीं बिगड़ते अभी तुम्हारी हत्या कर दे। उनके डर से मैं कुछ नहीं बोल रहा। इतने में मंथरा सामने आई तो शत्रुघ्न जी ने उसको कुबजे को एक पैर से मारा, यहां वो तो रोटी चिल्लाने लगी और दूसरा लात उठाया जब इसको खत्म कर देंगे। महाराज भरत जी ने उनको मना, रामचंद्र जी हमारे ऊपर में संतुष्ट हो जाएंगे, जरा धैर्य धारो। इसके बाद में कौशल्या मैया के गए, देख करके रोने लग गए, मैया मैं कुछ नहीं जा, ये क्या हुआ कैसे, हमारा इसमें तनिक भी हाथ। रोने लगे तो वो भी रोने लगी।
तरह तरह से धैर्य उनको दिलाए, फिर मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। खैर ये सब के बाद में भरत जी ने कहा मैं अभी कल सवेरे मैं रामचंद्र जी को बुलाने के लिए जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे साथ में गुरु जी रहेंगे, उनकी पत्नी रहेगी, अयोध्या के जो बड़े बड़े प्रमुख लोग हैं, सारे मंत्री हैं, हमारी शत्रुघ्नी सेना है, और राम को अभिषेक करने के लिए जो वस्तुएं अब यहाँ पर लाई गई थी वो सारी वस्तुएं साथ में चले, हम वहीं पर उनका राज्याभिषेक करेंगे और उनको मना करके ले आएंगे। सारे अयोध्या उमड़ पड़ी, मैं जाऊंगा, किसी घर पर रहने वाला कोई नहीं, किसी बूढ़े बूढ़े का इधर उधर रख करके सारी अयोध्या सुनसान छोड़ करके चित्रकूट में उनके साथ में राम को मनाने के लिए चले, हाथी घोड़े चतुरंगनी सेना सभी चली। जब प्रयाग पर आए, नहीं श्रृंगेरपुर में आए, तो राजा के सैनिकों ने उनको खबर दिया नरेश को, महाराज भरत चतुरंगनी सेना के साथ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, शायद राम का वध करने के लिए। क्या सैनिकों को कह दिया तुम लोग चौकन्ने हो जाओ, प्राण चले जाएंगे किंतु भरत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसके किसी मंत्री ने कहा जी इतना मत कीजिए, देखिए जी भरत की भावना को पहले जाइए देखिए पूछिए कैसी है, इसके बाद में ऐसा कुछ हो गया। बड़े हाथ जोड़ करके गया और उनका मनोभावना जानने के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि आप आए, आपका क्या आतिथ्य स्वीकार। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी कुछ दिन पहले आए थे, अब तो चित्रकूट चले गए हैं, यहाँ पर इसी स्थान पर सोए थे, यहाँ पर मैं और लक्ष्मण बातें कर रहा था, सीता जी के साथ में इसी तिनके के ऊपर में सोए थे। सुनते ही भरत रोने लगे, भीग उनकी बंद हो गई, उसको प्रणाम किया शस्त्रांग उस स्थान को, और प्रणाम करने के बाद में जबकि उनके भावों को देखा तो उनके चरणों में वो कौन नरेश निषाद्रा उनके चरणों में थे। राम कहते थे भूतल में भरत जैसा हमारे प्रति किसी का भाव नहीं है, यदि भरत नहीं जन्मा होता तो कोई भी भक्ति किसको कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं नहीं जानता, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। सुनते और भी भरत जी होने और फिर कहा जी चलिए मैं आपके साथ में चित्रकूट तक आपको ले चलूंगा और आपकी सहायता करूंगा, हमने अपराध किया जी आपसे युद्ध करूंगा। कहिए तो तुमने हमको मार क्यों नहीं दिया। चित्रकूट में पहले तो गए भरद्वाज जी के आश्रम में और जहां पर कि सीता जी को उन्होंने ऐसे आभरण दिए और ऐसा अंगराग दिया जिसको धारण करने से उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सौंदर्य नहीं दूर होगा, कपड़े मैले नहीं, अद्भुत सब चीज दिए और सीता को अपने हाथ से धारण कराया था, पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी सीता को
अनुसुईया देवी ने,
अनुसुईया
अत्री
जी की पत्नी, अत्री जी के पत्नी, और उस स्थान पर गए, उन्होंने उनका आह्वान किया, भरद्वाज ने सारी सेना समेत दशरथ की चतुरंगणी सेना के लिए मालपुए खीर राबड़ी और क्या क्या अपने जोग बल से सब तैयार कर दिया और उनके रहने के लिए अलग अलग भवन हाथीशाला घोड़शाला और क्या क्या बना दिया, देख करके चकित रह गए। जो अयोध्या के वैभव को भी यह मात कर रहा है इनकी तपस्या का ही। फिर उनको चरण में नवा करके फिर चित्रकूट पहुंचे, वहां पर क्या हुआ आगे आज यहीं पर बोलो।
आठ बजे गल
जल्दी जल्दी
ना। This was the time when Kekai was very pleased knowing that Ram is becoming king, and Mantra was giving her adverse advice. When she was listening these things from Mantra, at that time just she remembered three things altogether. she thought probably now this is my time to adopt some role. She remembered the promise which Dashrath gave to her father. The promise was that whoever will be the son of my daughter, that is Kekayi, he will become king. And only then her father became ready to get her daughter married to King Dashrath. Second, she remembered that her husband, Dashrath Maharaj, he became very much pleased on her and said that you should ask for two benedictions. And she said that please keep these benedictions pending for something else. And on the top of it, the third thing which really came in her mind, which was the key point and turning point of everything, that was she remembered that once Ram sitting in her lap said to her that Mata Kekayi, you are my dearest most mother, you will have to adopt a very very harsh role. I don't want to become king in Ayodhya first. I had so many things to go to jungle and forest. I have to kill Ravan and do so many things. So you will have to arrange everything for me. No one else can do, and I can bank upon you only. These three things came in her mind and she adopted a very, very adverse role. She became angry. She went in the room where the queens used to go at the time of when they adopt Maan. She just wore very dirty clothes, and when king came to know that she is displeased, he went there and asked, what is the matter? She said, do you remember those two promises you gave? You have to fulfill them. Yes, no problem. What is the promises you want from me? Then she said, you also remember that you gave one promise to my father? What? He really forgot. You gave my father that, you promised to my father that the child from my womb will become king. So you have to make Bharat king. And that was a shock to Dashrath. He was all planning to put his son Ram on throne, and he was very much shocked. Kekayi said, listen, my second promise. What is that? You should send Ram to exile for 14 years. Oh, that was intolerable. Dashrath could not hear and bear it. He just tumbled down and became faint. Then Kekayi said, you are so weak. You are so coward. You always said that you always stick to truth. You always stick to your words. And today you are going back from your words. You are unable to tolerate this thing. Dashrath, gathering his power again and again, saying to Kekayi, okay, your son Bharat will become king, but don't ask, don't insist for Ram to go to exile. She said, no, what do you think? If Ram will remain here in kingdom, how my son will be able to establish his kingdom? Ram has to leave this kingdom. And it was very, very unpleasant for Dashrath. He was unable to hear, to tolerate and bear it. The news was given to Lord Ram. And when Ram came there and he asked his father, what happened? Maharaja Dashrath was just crying and crying, was unable to say. Then Kekayi said, my dear son, very petty matter. I just asked for two promises, that my son Bharat should become king and you should go for 40 years in forest. Very, very pretty thing. and your father is unable to tolerate and bear it. Tell him. And Ram became very happy. Oh, father, it's so easy and so trifle thing for me. I am ready. I am very much pleased. My brother Bharat should become king. He is quite capable for it. And for him, I am ready to remain in forest forever, for whole of my life. And then he said, yes, I will go. Right now, I will go. Right now. Not even tomorrow. Right now, I will go. And he went to Kaushalya, Mother Kaushalya, touched her feet. Kaushalya thought that probably he has come for asking blessing because he is going to accept the king's throne. But when he told the whole story, Kaushalya was also shocked. And then Lakshman, when he heard this news, he became very angry. He took his bow and arrow. He said, my father Dashrath, he did not call him this time father. This is Dashrath. He is a lusty person. I will kill him today. How he dared to ask such a thing? Why he is following his wife? Why he is accepting the order of his wife? I will kill him. And this Bharat and Shatruman, I will also kill them. Then Lord Ram said, Lakshman, cool down. Cool down. You are supposed to please me. You are not able to understand the situation and gravity of this whole circumstances. My father is in a very deep agony and he is unable even to talk. And you want to fight with him? It is not his lusty situation. He gave a promise to her, his wife, and he is bound to fulfill that promise. Okay. Then I will also go with you. And Sita, she said, I will also go with you. Ram said, no. The forest is not an easy thing. The path is very difficult. So many mountains, so many ferocious animals and demons. And I cannot take you with me. You should remain here in Ayodhya or you may go to Janakpuri with your father's house. She said, my Janakpuri and my Ayodhya is with you only. I will go with you. Kaushalya also tried to pacify her, but she said, no, I will go. Now, a very interesting situation came. Mantra, that maid servant of Kekayi, she brought in her three plates, clothes for Ram, Sita and Lakshman. The clothes of exile, Balkal Vesh. Very, very, simple type of clothes. Sadhu Vesh. Then Ram accepted it. When Lakshman and Sita, Lakshman was going to take it Vishishtiji, he became very much angry on Mantra. Why are you giving these clothes to Lakshman? Ram is asked to go to exile, not Lakshman. Lakshman is going out of his own will, so he will wear the same dress which he is wearing. But Lakshman accepted that dress. And then he gave it to Sita. Again, Vishishti and his wife, they really rebuked her. But again, Sita, she also accepted it. They wore those dresses and they went from there. And when they went from there, they went to a kingdom of person. He was known as a low tribe person, but he was very great devotee of Lord Ram, Nishad Raj. And when he went there, Nishad Raj welcomed him. Welcomed Ram from the core of his heart. And he said, Ram, you have come to my kingdom. You have promised, you have left your own kingdom, Ayodhya. Now here is my kingdom. I offer it to you. You become king of this place and live here. This is not your country. It is different country. He said, Ram said, no. I have given promise to my father to live in exile. And then it was the night time to sleep. He offered him so good bed to sleep. But Lord Ram he went beneath a tree. And there they spread a few straws. And Lakshman spread his clothes on those straws. And Ram and Sita, they slept on that such a simple cot. You can understand what type of cot. And Lakshman, he remained awake and was talking to Nishad Raj and telling the whole story. Just in the midnight when everyone was fall asleep, Lord Ram got up. He made Sita Ji also got up. This is the time now we will go from here. When everyone is sleeping. And oh Nishad Raj, please arrange for a boatman so that we should cross this Ganges. And this boatman, his name is Kevat. The real name is not given, but name is known as Kevat, very famous person, dedicated devotee of Lord Ram. Knowing the real personality of Ram, and this Kevat came, he said, oh, I cannot take Ram in my boat. He is a very, very strange person. I heard that some dust of his feet was touched to a stone, and that stone became a woman, very beautiful female. But my boat is wooden boat. If some dust is touched by his feet, then my boat will become also a woman and I will remain of no wear. I have already one daughter and it is difficult for me to get her married. What will I do with two daughters? So I have to do one thing. If you are ready to come, if you really want to cross the Ganges, Ram said, what do you want? I will clean your feet so that no dust particles should remain on your feet. He was so clever. And then I will test also. I will just examine it. And he bought a pot, a wooden pot, with a Ganges water. He washed Lord Ram's feet as much as possible. That was his really great fortune. And then he said, okay, Lord, you touch this wooden pot. And he touched it, and it remained as it is. Well, now you come to my boat. And that way, he made across, he made they crossed that Ganges, and then he took that butter as his privilege, gave it to the whole of his family. What happened to Ayodhya? Oh, two messengers were sent to Bharat and Shatrughan to come back.
Oh, so
why are you calling? Why I am being called there? Those messengers said, Vishishti. Oh, one thing I forgot, because I am asked to finish it fast. Well, the important thing is that when Ram and Sita, they got down from the boat at that time, this is the conviction that fear should be given to boatmen. Ram did not have anything. Then he saw at Sita. Sita also gave up everything. She was not wearing any ornament except the marriage ring. She just took it off, gave it to Ram. And then Ram gave it to Kevat. Here is your feast. Kevat said, no, I cannot take a feast from the same professional man. What do you mean by same professional man? I am a boatman. He said, you are a boatman. Then boatman said, you are also a boatman. I am making this Ganges to cross. And you are making this ocean to cross. Ocean of birth and death. So when it will be my turn, I will not give any fees. And now it is your turn, I am not taking any fees. So Gurudev is saying, he was so much beloved of Ram, he already crossed that ocean. And then, when Bharat and Shatrughan, they came back, they saw Ayodhya was totally barren. It was totally a ruined city. No one was there. And when he went into the palace, he was welcomed by his mother and that maid servant Mantra. No one was there. Mother was wearing white clothes without any red sindoor on her head. And he said, Mother, what happened? Where is father? Father is at Kaushalya's house. But why you are wearing this white dress without any red sindoor? Oh, he died. Why he died? Oh, beta, oh my son, I did everything for you. I asked that Ram should go for 14 years exile and you should become king. But this is the only thing which created this whole situation. Oh, Bharat understood it. He became furious. He said, you are not my mother. I would have killed you, but I am afraid that Ram would not like it. So in order to please Ram, I am leaving you. But you are no more my mother. And Shatrughan, when he saw that maid servant, he just put a very, very big kick to her, and she was so much in agony that Bharat stopped him. And Bharat said, tomorrow I will go with Vasishtha and mother to Ram and will bring him back. We will take everything for his Abhishek and all. We will give him throne. I am not ready to accept this kingdom. And then they went. Next day, Bharat started going to Ram. When Bharat decided to go, then each and every person of Ayodhya said, we will also go, we will also go, we will also go. The whole army started moving with Bharat. All the public, all the everyone who was there, they started going with Bharat. And there was a big accompanying with Bharat. Bharat was going there. Meanwhile, Lord Ram left the place of Nishad Raj. He went to one rishi, where he met the wife of Atre Rishi, Arundhati. Anusuya. She gave a very, very mysterious dress to Sita ji. That was a dress, when Sita wore it, that dress never became dirty. And she gave such a beauty, a mysterious makeup to Sita ji, that will never make her, that she would not like, have any necessity to do any bath or anything. She will always remain fresh, ever fresh. That is the real cosmetic, I may say.
No hunger, no drinking, no thirst, no tiredness,
ever fresh, clothes will always remain fresh, no need to take bath also. This was really a very good dress was given by Anusuya to Sita ji. Then they went to the ashram of Bharadwaj Rishi. And at Bharadwaj Rishi, they went to Chitrakut. When Bharat was going to meet Ram and he came to the kingdom of Nishad Raj, then Nishad Raj has suspicion. He thought that Bharat is so much against of Ram that he is coming to kill Ram with his whole army. Why he is coming with his whole army? So he was very much suspicious on the intention of Bharat. And he was ready to kill Bharat because he was thinking that Bharat is having some malafide intention, not bona fide. Then one of his ministers said, no, first you should examine him, then you should kill him. Well, Bharat came there. Bharat asked Nishad Raj, my brother came here? Yes, your brother came here. Nishad Raj was moved. He slept here. These were the straws on which he slept for night. This was the place where I and Lakshman were talking. When he was saying this thing, Bharat, he just rolled down on at that place and he started crying. Then Nishad Raj understood that how much affection he is having for Bharat. Nishad Raj came to know that Lord Ram was saying right, that Bharat is very much dedicated devotee of Ram. Bharat is the real symbol of bhakti. And then Bharat went to Lord Ram, where the Ram was staying. And when he reached there, they had a very long discussion talk. This will be taken, I think, next day. And Guruji has stopped it here. God,
I will speak tomorrow of chapter 2 times.
You have to stay some days to finish.
What?
You have to stay some days to finish.
Oh.
What?
Jabba Kevat, Nannumal Ji, Nannumal Ji.